राष्ट्रपति पद के चुनावी नतीजे आने से पहले आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का चुना जाना तय माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा गुरुवार यानी आज शाम भारतीय समय अनुसार 5 बजे तक इंतजार करना होगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पड़े वोटों की गिनती का काम सुबह 11 बजे भारतीय संसद के भवन में शुरू होगा। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अनूप मिश्रा इस प्रक्रिया के कर्ताधर्ता यानी पीठासीन अधिकारी हैं। 17 जुलाई को वोटिंग भारत की संसद और भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं में हुई थी। अब सारे देश से मतपेटियां संसद भवन में पहुंच चुकी हैं और गुरुवार को वोटों की गिनती शुरू होनी है। सबसे पहले उन मतपेटियों को खोला जाएगा जिनमें संसद भवन में वोट डले थे, उसके बाद अलग अलग राज्यों से आई मतपेटियों के वोटों की गिनती की जाएगी। संसद भवन में वोटों की गिनती के लिए केवल 4 टेबल हैं, यानी 4 जगह पर ही एक साथ वोट गिने जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल 10.5 लाख वोट हैं और 8 राउंड की मतगणना होगी। जब हम 10.5 लाख वोट कहते हैं तो इसका अर्थ इलेक्टोरल कॉलेज में उनका जो वजन है उसके हिसाब से लगाया जाता है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कुल वोटों के आधे से 1 वोट अधिक हासिल करना जरूरी होता है। इस चुनाव में हर वोटर सांसद और विधायक को 1 से अधिक पसंद बतानी होती है, यानी पहली पसंद, दूसरी पसंद या तीसरी पसंद तक वो बता सकते हैं। मतगणना के वक्त पहले वोटरों के पहली पसंद को जोड़ा जाता है, फिर अगले राउंड की गिनती शुरू होती है जिसमें वोटरों की दूसरी या तीसरी पसंद को गिना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप भी जारी नहीं होता और इसीलिए सांसद और विधायक किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। सांसदों और विधायकों की ताकत को देखते हुए भारत की सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को करीब 7 लाख से अधिक वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इस तरह से उनके जीतने में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पूरा चुनाव एक दलित बनाम दूसरे दलित बन गया तो हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया मेलबर्न में स्थित सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक विश्लेषक शिवेश पांडे जी को। शिवेश जी, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद जय जी।
सर, इस पूरे चुनाव को अगर हम 2017 की नजर से देखें तो आपको क्या दिखाई देता है?
जहां तक दलित बनाम दलित राष्ट्रपति चुनाव का भारत में मतलब है, दलित एक पर्यायवाची शब्द है पिछड़े होने का, अशिक्षित होने का, गरीब होने का। और ये दोनों ही प्रत्याशी, श्री चाहे वो राम श्री राम कोविंद जी हो या श्रीमती मीरा कुमार जी हो, दोनों ही बहुत ही पढ़े लिखे हैं। राम कोविंद जी सिविल सर्विसेज में जाते जाते रह गए, उन्होंने अपनी अलग प्रतिष्ठा कायम की, वो बहुत बड़े अधिवक्ता रहे हैं। वो पिछले प्रधानमंत्री श्री मुरारजी देसाई के निजी सहयोग भी रहे हैं। और जहां तक मीरा कुमार जी का है, वो बहुत ही प्रतिष्ठित नेता श्री जगजीवन राम की पुत्री हैं, IFS रह चुकी हैं, फॉरेन सर्विसेज में काम कर चुकी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे स्कूल्स में हुई है। उनकी जहां तक शादी भी एक ब्राह्मण श्री मंजुल कुमार जी से हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सचमुच में दलित हैं या एक राजनीतिक कारोबार के तहत उनके नाम को या उनके दलित होने के नाम को भारतीय राजनीति में पेश किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे हिसाब से।
अच्छा, अगर हम भारत के तरफ देखें तो ये प्रतीकों की राजनीति कब तक चल सकती है? भारत को ये जो प्रतीक के तौर पर काम किए जाते हैं उसको रोकना होगा। अगर वो 21वीं सदी में जिस तरह की बड़ी बातें कर रहे हैं उसमें कुछ सही मायनों में बदलाव करना चाहते हैं तो
जी, जहां तक बहुत लोगों ने ये जानते हैं कि तुलसीदास जी ने सदियों पहले एक बात कही थी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी कि कर्म प्रधान ही आज के, खासकर आज के पर्याय में अगर आप देखें तो तो अगर आप मीरा कुमार जी या राम कोविंद जी को दलित के रूप में देखेंगे तो उससे बड़े हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति को और खासकर राष्ट्रपति चुनाव को इस जातिवाद से दूर रखा जाना चाहिए। बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, दोनों ही उम्मीदवार बहुत ही योग्य हैं और यहाँ तक कि लगभग तय है कि श्री राम कोविंद जी चुने जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि इस दलित नुमा चुनाव को मीडिया को भी बढ़ावा देना चाहिए और इस सरकार को उस तरफ धीरे धीरे कदम उठाना चाहिए, लोगों में थोड़ा अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि कृपया केवल नाम को, दलित नाम को आगे बढ़कर ना देखें, जबकि आप ना दूसरे तरीके से देखें। हाँ, जो कि सही में गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है।
शिवेश जी, SBS हिंदी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जय जी।